एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज की जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते और आपका स्वागत है एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। आज हम एक ऐसे कह सकते हैं विशाल ग्रंथ समूह पर बात करने जा रहे हैं जिसने न सिर्फ इतिहास को आकार दिया है बल्कि दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन पर, उनकी सोच पर, उनकी संस्कृतियों पर बहुत गहरा असर डाला है। हम बात कर रहे हैं बाइबल की।
नमस्ते। हाँ, बाइबल जो यहूदी और ईसाई परंपराओं का आप कह सकती हैं आधार स्तंभ है, और ये शुरू में ही साफ करना जरूरी है। जैसा आपने कहा कि ये कोई एक किताब नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी लाइब्रेरी जैसी है। इसमें कविताएं हैं, इतिहास है, नियम हैं, भविष्यवाणियां हैं, पत्र हैं।
मतलब एक अद्भुत संग्रह है।
सही।
और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी कहानी कहते हैं, इंसान और ईश्वर के रिश्ते की कहानी।
हाँ, और ये सवाल उठना लाजमी है कि भाई हजारों साल पहले लिखी गई ये बातें, ये कहानियां आज हमारे लिए क्यों मायने रखती हैं?
शायद इसलिए कि ये उन बुनियादी गहरे सवालों से टकराती हैं जो हम सब मतलब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं कि हम कहाँ से आएं, इस जीवन का मकसद क्या है, दुनिया में इतनी तकलीफें क्यों हैं, क्या कहीं कोई उम्मीद है, कोई रास्ता है।
बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस विशाल ग्रंथ के सागर में एक डुबकी लगाएं, इसके मुख्य विचारों को, इसकी बनावट को, इसके संदेशों को समझने की कोशिश करें एक सरल, एक सुलभ तरीके से।
हाँ, मतलब बोझिल ना लगे।
हाँ, बिना किसी को बोझिल महसूस कराए हम इसके सार को पकड़ने का प्रयास करेंगे।
तो चलिए शुरुआत करते हैं इसके लेखकों से। ये बाइबल की सबसे हैरान करने वाली बातों में से एक है। कोई एक लेखक
नहीं,
बल्कि करीब 40 अलग अलग लोग, और वो भी कोई एक दो साल में नहीं बल्कि लगभग 1500 सालों के लंबे दौर में इन्होंने इसे लिखा। सोचिए जरा, कमाल की बात है ना। और ये लेखक भी कितने अलग अलग पृष्ठभूमि से थे। कहाँ राजा दाऊद और सुलेमान जो अपनी प्रार्थनाओं और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं, और कहाँ चरवाहे या पत्रस और यूहन्ना जैसे मछुआरे, फिर भविष्यवक्ता यशाया और यर्मया जैसे विचारक, लूका जैसा चिकित्सक, मत्ती जैसा सोचे कर वसूलने वाला, और पौलुस जैसा प्रकांड विद्वान भी, और कई तो गुमनाम भी है। मतलब ये विविधता ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करती है।
हाँ, ये विविधता ही से खास बनाती है। लेकिन इन सब में एक समान दावा क्या था? वो था दैवीय प्रेरणा का। उनका मानना था कि वे जो लिख रहे हैं वो सिर्फ उनके अपने विचार नहीं बल्कि ईश्वर की ओर से प्रेरित हैं। कई तो उन घटनाओं के चश्मदीद गवाह थे जिनके बारे में उन्होंने लिखा।
और दिलचस्प बात ये है कि वे सिर्फ नायकों की महानता ही नहीं दिखाते, ऐसा नहीं है। वे अपनी कमियों, अपनी गलतियों, यहाँ तक कि अपने नायकों की विफलताओं को भी खुलकर दर्ज करते हैं।
हाँ, ये बहुत जरूरी बात है।
ये ईमानदारी इसे सिर्फ एक प्रचार ग्रंथ होने से बचाती है और इसे एक ज्यादा मानवीय और आप कह सकती हैं विश्वसनीय दस्तावेज बनाती है, है ना? ऐसा लगता है कि वे सच्चाई बताने से कतरा नहीं रहते, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों न हो।
बिल्कुल। तो अब सवाल उठता है कि ये किताब आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ इतिहास है या धर्म या साहित्य
या सब कुछ?
हाँ, शायद ये इन सब का मिश्रण है। इसका मुख्य उद्देश्य तो ईश्वर के स्वरूप, उनके इरादों और मानवता के साथ उनके रिश्ते को उजागर करना है। ये एक तरह से मानवता की आध्यात्मिक यात्रा का दस्तावेज भी है।
हाँ, और ये यात्रा किसी महाकाव्य से कम नहीं है। यह हमें सृष्टि की शुरुआत से लेकर राष्ट्रों के बनने बिगड़ने, साम्राज्यों के उत्थान पतन से गुजारते हुए एक ऐसे भविष्य की ओर ले जाती है जहां न्याय और करुणा का मिलन होता है। इसमें उम्मीद है, निराशा है, वफादारी है, धोखा है, मतलब जीवन के सारे रंग हैं इसमें।
और इस पूरी कहानी का एक ढांचा है ना, जो बार बार उभर कर आता है। सृष्टि यानी सब कुछ कैसे शुरू हुआ, फिर पतन यानी इंसान ने ईश्वर की आज्ञा तोड़ी और चीजें बिगड़ गईं।
हाँ,
फिर छुटकारा यानी ईश्वर की तरफ से चीजों को ठीक करने की पहल और योजना, और अंत में बहाली रेस्टोरेशन यानी सब कुछ वैसा हो जाना जैसा उसे होना चाहिए था। ये चार चरण बार बार दिखते हैं।
और इस सब के केंद्र में है वाचा कोवेनेंट की अवधारणा। इसे हम ईश्वर और इंसान के बीच एक पवित्र समझौते या रिश्ते की तरह समझ सकते हैं।
हाँ, एक वादा।
हाँ, एक गहरा वादा। ये वाचाएं समय के साथ विकसित होती हैं, नूह से, इब्राहिम से, मूसा से, दाऊद से, और फिर ईसाई मान्यता के अनुसार यीशु मसीह में एक नई वाचा तक। ये दिखाती हैं कि ईश्वर लगातार इंसान के साथ रिश्ता बनाना और निभाना चाहते हैं।
तो चलिए अब बाइबल के इस विशाल संग्रह को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है, पुराना नियम ओल्ड टेस्टामेंट और नया नियम न्यू टेस्टामेंट। पुराना नियम, जिसे यहूदी तनख भी कहते हैं, वो नए नियम की नींव रखता है। इसकी शुरुआत होती है पंच ग्रंथ या तौरात से, यानी पहली पांच किताबें।
इसमें उत्पत्ति जेनेसिस से कहानी शुरू होती है, दुनिया कैसे बनी, पहले इंसान आदम और हव्वा, उनका पतन, नूह का जल प्रलय और फिर इब्राहिम जैसे व्यक्तियों के साथ ईश्वर के विशेष रिश्ते यानी वाचा की शुरुआत होती है। फिर निर्गमन एक्सोडस में हम देखते हैं कि कैसे मूसा के नेतृत्व में इसराइली लोग मिस्र की गुलामी से निकलते हैं और उन्हें सीने पर्वत पर 10 आज्ञाएं और बाकी व्यवस्था मिलती है। ये आज्ञाएं सिर्फ नियम नहीं थी बल्कि उस वाचा के तहत जीने का एक तरीका थी।
इसके बाद लेवी व्यवस्था आती है, जो थोड़ी सी शायद पढ़ने में मुश्किल लगे, लेकिन ये पवित्रता, उपासना और बलिदानों के बारे में विस्तार से बताती है कि कैसे एक अपवित्र इंसान एक पवित्र ईश्वर के करीब आ सकता है।
सही।
गिनती में इसराइलियों के जंगल में 40 साल भटकने का वो मुश्किल सफर है जो उनके विश्वास और अविश्वास की कहानी कहता है। और व्यवस्था विवरण में मूसा अपनी मृत्यु से पहले लोगों को फिर से ईश्वर की व्यवस्था याद दिलाते हैं और जोर देते हैं कि आज्ञा पालन डर से नहीं बल्कि प्रेम से होना चाहिए।
हाँ, प्रेम से।
ये पंच ग्रंथ एक तरह से नींव का पत्थर हैं।
इस नींव पर बनती है ऐतिहासिक पुस्तकें, यहोशू से एस्तर तक। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे इजरायली वादा किए गए देश में प्रवेश करते हैं, फिर कैसे न्यायाधीशों के समय में अराजकता फैलती है, क्योंकि जैसा उसमें लिखा है, हर कोई वही करता था जो उसकी नजर में ठीक था।
अराजकता।
हाँ, फिर राजशाही की शुरुआत होती है शाउल, दाऊद और सुलेमान जैसे प्रसिद्ध राजाओं के साथ, शमुएल राजा। लेकिन कहानी हमेशा अच्छी नहीं रहती। राज्य दो हिस्सों में बढ़ जाता है, लोग ईश्वर से दूर हो जाते हैं और आखिरकार उन्हें निर्वासन झेलना पड़ता है।
हाँ, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये अच्छी बात है। एज़रा और नहेमाया जैसी किताबें निर्वासन से वापसी और यरूशलेम के पुनर्निर्माण की उम्मीद भरी कहानी कहती हैं।
बिल्कुल।
और एस्तर की किताब दिखाती है कि कैसे ईश्वर मुश्किल हालात में भी, मतलब पर्दे के पीछे से, अपने लोगों की रक्षा करते हैं। ये ऐतिहासिक किताबें सिर्फ अतीत का ब्यौरा नहीं है, ये दिखाती हैं कि ईश्वर के साथ रिश्ते में जीने के वास्तविक परिणाम क्या होते हैं, आज्ञाकारिता से आशीष और अवज्ञा से मुश्किलें।
इतिहास के बाद आता है एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा, ज्ञान और काव्य पुस्तकें, अय्यूब से श्रेष्ठ गीत तक। अय्यूब की किताब एक बेहद मुश्किल सवाल उठाती है, नेक इंसान दुख क्यों उठाते हैं? ये आसान जवाब नहीं देती बल्कि ईश्वर की संप्रभुता और मानवीय समझ की सीमाओं पर सोचने को मजबूर करती है।
हाँ, ये तो बहुत गहरा सवाल है। और भजन संहिता तो जैसे इंसानी भावनाओं का आईना है, इसमें ईश्वर के लिए स्तुति है तो दुख और निराशा का इजहार भी है, गुस्सा है, सवाल हैं, भरोसे का ऐलान है, मतलब सब कुछ। ये सिखाते हैं कि हम अपनी हर भावना के साथ ईश्वर के पास जा सकते हैं।
सही कहा।
नीति वचन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए व्यवहारिक सलाह और बुद्धिमानी की बातें सिखाती है, कैसे जिएं, कैसे बोलें, कैसे रिश्ते निभाएं।
सभोपदेशक थोड़ी दार्शनिक किताब है जो पूछती है कि सूर्य के नीचे यानी ईश्वर के बिना जीवन का क्या अर्थ है, और उसका निष्कर्ष है सब कुछ व्यर्थ है अगर ईश्वर केंद्र में ना हो। और श्रेष्ठ गीत ये मानवीय प्रेम, खासकर वैवाहिक प्रेम की सुंदरता और पवित्रता का जश्न मनाती है। इसे अक्सर ईश्वर और उनके लोगों के बीच के प्रेम के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। ये किताबें दिल और दिमाग दोनों को छूती हैं।
पुराने नियम का आखिरी हिस्सा है भविष्यवाणी की पुस्तकें, यशाया से मलाकी तक। अब भविष्यवक्ता सिर्फ भविष्य बताने वाले नहीं थे जैसा लोग सोचते हैं, वो ईश्वर के प्रवक्ता थे।
सही।
उन्होंने लोगों को उनके पापों, खासकर मूर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय जैसे गरीबों पर जुल्म, भ्रष्टाचार के लिए टोका और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं सुधरे तो ईश्वर का न्याय आएगा।
लेकिन वे सिर्फ न्याय की बात नहीं करते थे, उन्होंने भविष्य की आशा भी दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर अपने लोगों को पूरी तरह छोड़ेंगे नहीं, वे उन्हें वापस लाएंगे, एक नई वाचा बांधेंगे जो दिलों पर लिखी होगी, और सबसे बढ़कर वे एक मसीहा भेजेंगे।
मसीहा। हाँ
हाँ, एक उद्धारकर्ता राजा जो शांति और न्याय का राज्य स्थापित करेंगे। ये भविष्यवाणियां पुराने नियम को एक उम्मीद के साथ समाप्त करती हैं और नए नियम के लिए मंच तैयार करती हैं।
बिल्कुल। और इसी उम्मीद के साथ हम नए नियम में आते हैं जो ईसाई धर्म का केंद्रीय ग्रंथ है। इसकी शुरुआत होती है चार सुसमाचारों से, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। ये चारों यीशु मसीह के जीवन, उनकी शिक्षाओं, उनके चमत्कारी कामों, उनकी मृत्यु और उनके जी उठने यानी पुनरुत्थान का विवरण देते हैं।
ये चारों मिलकर एक ही कहानी कहते हैं, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से। जैसे चार गवाह एक ही घटना का वर्णन कर रहे हो अपने अपने नजरिए से।
हाँ, ये अच्छा उदाहरण है।
मत्ती यीशु को उस मसीहा राजा के रूप में पेश करते हैं जिसका वादा पुराने नियम में था। मरकुस यीशु के शक्तिशाली कामों और उनकी सेवा पर जोर देते हैं। लूका, जो एक गैर यहूदी थे, यीशु की कहानी को पूरी दुनिया के लिए प्रस्तुत करते हैं, उनकी करुणा और गरीबों के प्रति उनके प्रेम को उजागर करते हुए।
और यूहन्ना
यीशु की दिव्यता और उनके ईश्वर के साथ गहरे संबंध पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वो जो प्रसिद्ध वचन है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो इसी में है।
अच्छा, सुसमाचारों के बाद आती है प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स की किताब। ये एक तरफ से सुसमाचार की अगली कड़ी है ना?
हाँ, बिल्कुल।
ये बताती है कि यीशु के स्वर्ग जाने के बाद उनके शिष्यों ने पवित्र आत्मा की शक्ति पाकर कैसे चर्च की शुरुआत की और कैसे ये संदेश यरूशलेम से निकलकर उस समय की ज्ञात दुनिया यानी रोमन साम्राज्य तक फैल गया। ये शुरुआती चर्च के उत्साह, उनकी चुनौतियों और चमत्कारों की कहानी है।
फिर आती हैं पत्रियां। रोमियो से लेकर यहूदा तक, ये ज्यादातर प्रेरितों द्वारा, खासकर पौलुस द्वारा, अलग अलग जगहों पर नई बनी कलीसियाओं या चर्चों या फिर व्यक्तियों को लिखे गए पत्र हैं।
सिर्फ चिट्ठियां नहीं है ये?
नहीं, ये सिर्फ चिट्ठियां नहीं है, ये ईसाई धर्म की शिक्षाओं को व्यवस्थित रूप से समझाती हैं, जैसे विश्वास के द्वारा उद्धार कैसे मिलता है, जैसा रोमियो की पत्री में है प्रेम का क्या महत्व है, जैसा कुरिन्थियों की पत्री में है, और मसीही जीवन कैसे जिया जाए। ये व्यवहारिक मार्गदर्शन से भरपूर है।
और नए नियम और पूरी बाइबल का अंत होता है प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन की किताब से। ये थोड़ी रहस्यमयी किताब लगती है।
हाँ, ये एक बहुत ही प्रतीकात्मक और रहस्यमयी किताब है, जिसमें दर्शनों और भविष्यवाणियों का वर्णन है। ये इतिहास के अंत, बुराई पर अच्छाई की अंतिम जीत, अंतिम न्याय और एक नए स्वर्ग और नई पृथ्वी की स्थापना की बात करती है, जहां ईश्वर हमेशा अपने लोगों के साथ रहेंगे।
उस समय के लिए तो ये बहुत बड़ी आशा रही होगी।
हाँ, उस समय सताए जा रहे ईसाइयों के लिए आशा और धीरज का संदेश थी ये।
तो ये थी बाइबल की एक झलक, उसकी संरचना और उसके मुख्य खंड। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर देखें तो कुछ बड़े विषय या संदेश हैं जो पूरी बाइबल में एक धागे की तरह पिरोए हुए लगते हैं ना?
हाँ, बिल्कुल। एक तो ये है कि ईश्वर संप्रभु है, यानी सब कुछ उनके नियंत्रण में है, लेकिन साथ ही इंसान भी अपनी पसंद और कामों के लिए जिम्मेदार है। ये एक तनाव जैसा लगता है, पर बाइबल इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ लेकर चलती है।
मतलब भगवान की मर्जी भी है और हमारी मर्जी भी?
हाँ, एक तरह से ईश्वर अपनी योजना पूरी करते हैं, अक्सर इंसानों के स्वतंत्र चुनाव के जरिए ही, चाहे वो अच्छे हों या बुरे।
अच्छा, दूसरा बड़ा विषय आपने बताया था वाचा का रिश्ता, कोविनेंट रिलेशनशिप।
जी हाँ, ईश्वर लगातार इंसानों के साथ एक प्रतिबद्ध रिश्ते में बंधना चाहते हैं। ये कोई दूर बैठे ईश्वर की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे ईश्वर की कहानी है जो इतिहास में शामिल होते हैं, वादे करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंसान भी उन वादों पर खरा उतरे। ये रिश्ता ही बाइबल की कहानी का मूल है।
फिर न्याय और दया का संतुलन। बाइबल का ईश्वर न्यायी है, पाप और अन्याय को नजरअंदाज नहीं करता, लेकिन वो साथ ही बेहद दयालु और क्षमा करने वाला भी है। ये दोनों गुण कैसे मिलते हैं?
ईसाई धर्म के अनुसार इसका जवाब यीशु के क्रूस पर मिलता है, जहां पाप की सजा भी दी गई और माफी का रास्ता भी खोला गया, ऐसा माना जाता है।
और ईश्वर का राज्य, किंगडम ऑफ गॉड,
जी,
ये भी बार बार आता है।
हाँ, ये भी एक लगातार चलने वाला विषय है। ये सिर्फ स्वर्ग में भविष्य की बात नहीं है, बल्कि पृथ्वी पर ईश्वर की इच्छा पूरी होने, उनके शासन के स्थापित होने की बात है। ये अदन के बाग से शुरू होता है, इसराइल राष्ट्र के जरिए दिखता है, यीशु इसकी घोषणा करते हैं और प्रकाशित वाक्य में इसकी अंतिम पूर्णता का दर्शन है। ये एक उम्मीद है कि दुनिया जैसी है वैसी हमेशा नहीं रहेगी।
और ये सब मिलकर एक छुटकारे की कहानी, रिडेम्प्टिव हिस्ट्री बनाते हैं। मतलब इतिहास यूं ही नहीं चल रहा, इसका एक मकसद है, ईश्वर धीरे धीरे अपनी उस योजना को खोल रहे हैं जिससे वे इस टूटी हुई दुनिया और इंसानों को वापस सही स्थिति में लाएंगे।
हाँ, और इस कहानी का नायक ईसाई नजरिए से यीशु मसीह हैं।
और इन सबके पीछे जो सबसे बड़ी शक्ति काम कर रही है वो है ईश्वरीय प्रेम, डिवाइन लव।
हाँ बिल्कुल, ये कोई भावुक किस्म का प्यार नहीं बल्कि एक सक्रिय, कीमत चुकाने वाला, आत्म बलिदान करने वाला प्रेम है। यूहन्ना 3:16 इसी प्रेम की बात करता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया।
ये प्रेम ही पूरी कहानी को चलाता है।
वाकई बाइबल में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं और याद रह जाती हैं। कुछ एक पर नजर डालें।
जैसे पहली पंक्ति, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की।
हाँ,
उत्पत्ति 1:1।
हाँ,
ये पूरी दुनिया को देखने का नजरिया तय कर देती है। सब कुछ अचानक नहीं हुआ बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत थी।
या फिर भविष्यवक्ता मीका की ये बात, वह तुझको बता चुका है कि अच्छा क्या है और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है, कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले।
मीका 6:8।
धर्म का सार क्या है? कर्मकांड या सिर्फ जानना?
नहीं
नहीं
नहीं,
बल्कि न्याय करना, दया करना और ईश्वर के साथ विनम्रता से चलना। कितनी सीधी और गहरी बात है।
नए नियम का वो मशहूर वचन तो है ही, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16। ईसाई धर्म का निचोड़ शायद इसी में है, ईश्वर का प्रेम, उनका बलिदान, विश्वास का महत्व और अनंत जीवन की आशा।
और जब यीशु से पूछा गया कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो उन्होंने दो बातें कहीं। तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से प्रेम रखना और तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। मरकुस 12:30-31।
दो हिस्से।
हाँ, यानी पूरी नैतिकता का आधार यही दो तरफा प्रेम है, ईश्वर की ओर और इंसान की ओर। कर्मकांड या नियम बाद में आते हैं, पहले ये रिश्ता आता है।
एक और जो मुझे बहुत हिम्मत देती है वो पौलुस की ये बात है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, रोमियो 8:28। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा कुछ होगा ही नहीं,
नहीं बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये भरोसा कि मुश्किलों के बीच भी ईश्वर कुछ अच्छा निकाल सकते हैं अगर हम उनसे जुड़े रहें।
तो सवाल उठता है कि इन सब गहरी बातों का हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी से क्या लेना देना है? इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे देख सकते हैं? क्या है इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस?
देखिए, सबसे पहली बात तो नैतिकता की है। बाइबल हमें सही गलत का एक पैमाना देती है। 10 आज्ञाएं हों या यीशु का स्वर्णिम नियम, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम चाहते हो कि वे तुम्हारे साथ करें। ये सिर्फ पुराने जमाने की बातें नहीं है।
सही,
आज भी हमारे रिश्तों में, हमारे काम की जगह पर, हमारे समाज में ये मार्गदर्शन दे सकती हैं। ईमानदारी, सच्चाई, दूसरों का भला चाहना, ये मूल्य तो हमेशा प्रासंगिक रहेंगे।
दूसरा, ये जीवन को एक मकसद देती है। अगर हम सिर्फ एक जैविक संयोग नहीं हैं, बल्कि ईश्वर की छवि में बनाए गए हैं, तो हमारे जीवन का, हमारे काम का, हमारे रिश्तों का एक मतलब है, एक उद्देश्य है। ये सोच हमें अपने काम को सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी समझने में मदद कर सकती है, अपने परिवार और दोस्तों के साथ रिश्तों को और गहरा बना सकती है।
और दुख और मुश्किलों में आशा। जिंदगी में मुश्किलें तो आती हैं, बाइबल इससे इनकार नहीं करती। अय्यूब की कहानी या भजन संहिता के दुख भरे गीत इसके गवाह हैं।
बिल्कुल,
लेकिन ये साथ में एक उम्मीद भी देती है कि हम अकेले नहीं हैं, ईश्वर हमारी परवाह करते हैं और अंत में सब कुछ ठीक होगा। ये हमें मुश्किल समय में हार मानने की बजाय टिके रहने की ताकत दे सकती है।
रिश्तों और समुदाय पर भी इसका बहुत जोर है। क्षमा करना, एक दूसरे का बोझ उठाना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये सब बाइबल की मुख्य शिक्षाएं हैं। आज के जमाने में जहां अकेलापन बढ़ रहा है, ये सिद्धांत हमें बेहतर परिवार, दोस्त, पड़ोसी और नागरिक बनने में मदद कर सकते हैं।
हाँ, कनेक्शन।
हाँ, एक दूसरे से जुड़ना, समुदाय बनाना, ये इंसान की बुनियादी जरूरत है।
और हाँ, सामाजिक न्याय का पहलू भी बहुत अहम है। बाइबल बार बार गरीबों, कमजोरों, विधवाओं, अनाथों और परदेसियों की चिंता करने को कहती है। यह हमें सिखाती है कि हर इंसान का सम्मान होना चाहिए क्योंकि वो ईश्वर की नज़र में मूल्यवान है। यह हमें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और समाज को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है।
तो इस सारी बातचीत के बाद अगर एक चीज हो जो हम बाइबल से सीख सकते हैं, तो वो क्या होगी आपकी नज़र में?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि बाइबल सिर्फ नियमों या इतिहास की किताब नहीं बल्कि एक बड़ी कहानी है, ईश्वर के न टूटने वाले प्रेम और इंसान को बचाने की उनकी योजना की कहानी। ये हमारे छोटे से जीवन को उस बड़ी कहानी से जोड़ती है और उसे गहरा अर्थ देती है। ये बताती है कि हमारी कहानी का भी उस बड़ी कहानी में एक हिस्सा है।
और मेरे लिए जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि हजारों साल पहले लिखे गए ये शब्द आज भी इंसान के दिल, उसकी जरूरतें, उसके डर और उसकी उम्मीदों के बारे में इतनी सच्चाई से बात करते हैं।
हाँ।
और ये जो अनुग्रह का विचार है कि ईश्वर की स्वीकृति हमें अपनी अच्छाई या कामों से कमानी नहीं पड़ती बल्कि ये विश्वास के जरिए एक तोहफे की तरह मिलती है, ये हमारी कुछ करके पाने वाली सोच के बिल्कुल उलट है। ये सच में क्रांतिकारी है।
और शायद यही सवाल पाठक के लिए सोचने को रह जाता है। अगर ईश्वर की स्वीकृति कमाई नहीं जाती तो फिर जीवन में अच्छे काम करने या नैतिक होने का क्या मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा तनाव है जिससे बाइबल खुद जूझती है और जिस पर विचार करते रहना शायद हमारे अपने जीवन को और सार्थक बना सकता है। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।